दो मार्च दिन भर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फतल। सुपर ट्यूसडे में कोई अपसेट नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया। जेएनयू मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को अंतरिम जमानत मिली। दुनिया जहान में आज चर्चा इस बात पर कि ग्वांतानामो जेल बंद हो या न हो।
तो डोमेस्टिक पॉलिसी में ओबामा ने काफी मेजर अचीवमेंट कर चुके हैं और फॉरेन पॉलिसी में भी उनको मेजर सक्सेसेस मिल गए हैं, ईरान और क्यूबा का। लेकिन अगर ये ग्वांतानामो बंद कर लेते हैं तो उन्होंने अपने जो सारे मेजर प्रोमिसेस थे वो पूरे कर लेंगे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डेमोक्रेट पार्टी से हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने सुपर ट्यूसडे के दिन ज्यादातर राज्यों में जीत दर्ज की है। 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले कल यानी सुपर ट्यूसडे को 11 राज्यों में वोटिंग हुई। डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स को पछाड़ा तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन टेड क्रूज को। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शाम ये फैसला सुनाया। 29 फरवरी को जमानत पर हुई बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 12 फरवरी को कन्हैया को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए जाने पर गिरफ्तार किया था। इंडोनेशिया के दक्षिण पश्चिम में भयंकर भूकंप आने की खबर है। इंडोनेशिया के भूगर्भ विभाग का कहना है कि इसकी तीव्रता 7.8 थी। इसका केंद्र पदांग से 808 किलोमीटर दूर बताया गया है। वरिष्ठ नेटो कमांडर जनरल फिलिप ब्रीडलव ने कहा है कि हाल के दिनों में पूर्वी यूक्रेन पर हमलों में इजाफा हुआ है। यहां रूस समर्थक बलों और यूक्रेनी सेना में मुठभेड़ होती रहती है। वॉशिंगटन में कल जनरल ब्रीडलव ने कहा कि पिछले हफ्ते ही गोलाबारी की करीब 450 घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि ये सैन्य गतिविधियां उन जगहों पर भी हो रही हैं जो पहले अपेक्षाकृत शांत इलाके थे।
There are concerns
इस तरह की चिंताएं हैं कि ये गतिविधियां अब और इलाकों में भी फैलती जा रही हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब गोलीबारी की इन घटनाओं में उन भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिन्हें पहले लड़ाई के क्षेत्र से हटा दिया गया था। ये थे जनरल ब्रीडलव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पूर्वी अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए चरमपंथी हमले में कुल 7 लोग मारे गए हैं। इनमें 2 नागरिक भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में इस हमले में शामिल 2 आत्मघाती हमलावर और 4 बंदूकधारी भी मारे गए हैं। जनवरी में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास पर ऐसा ही हमला हुआ था। तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों संगठनों के लड़ाके इस इलाके में सक्रिय हैं। 6 सदस्यीय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को एक चरमपंथी संगठन का दर्जा दिया है। इस शिया संगठन पर दबाव बनाने के लिए उठाए गए कदमों में ये एक ताज़ा कदम है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बल है और सीरिया के गृहयुद्ध में राष्ट्रपति असद का समर्थन करता है। गल्फ काउंसिल के महासचिव ने कहा कि ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि हिजबुल्लाह ने खाड़ी देशों के युवा लोगों की भर्ती शुरू कर दी थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार बनने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप को 7 राज्यों में बढ़त मिली है जबकि टेड क्रूज के हिस्से में 2 राज्य और मार्को रूबियो के हिस्से में 1 राज्य आया है। पाम बीच फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन पर निशाना साधा।
You know, I watched Hillary's speech and she's talking about wages have been poor and everything's poor and everything's doing badly, but we're gonna
मैंने हिलेरी के भाषण को देखा। वो कम तनख्वाह के बारे में बात कर रही हैं। वो कह रही हैं हर जगह गरीबी है, हर जगह बदहाली है, इसके बावजूद हम जीतने जा रहे हैं। वो वहां पर काफी समय से हैं। वो अब तक व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाई तो अगले 4 सालों में क्या करेंगी। चीजें बद से बदतर होती जाएंगी। वो अमेरिका को संपूर्ण बनाना चाहती हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये है क्या चीज। हमारा नारा अमेरिका को फिर से महान बनाओ उनके नारे से कहीं बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। सुपर ट्यूसडे पर ब्रजेश उपाध्याय ने वॉशिंगटन से ये रिपोर्ट भेजी है।
ये है अमेरिका का पसंदीदा खेल डर्ट ट्रैक रेसिंग, यानी धूल मिट्टी वाले ट्रैक्स पर कारों की रेस। इसमें खतरा है, खून सर चढ़कर बोलता है, कीचड़ की बारिश होती है, लेकिन जीत के लिए सब कुछ जायज है। और इसमें शामिल होने वाले ड्राइवर हो या मैकेनिक, वो अमेरिकी सियासत में इन दिनों किसके साथ होंगे इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जब ट्रंप अपने ऐसे चाहने वालों के सामने होते हैं तो बस एक पैगाम दोहराते हैं, जीत, और हर हाल में जीत।
जीत 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 और सिर्फ जीत। हम इतना जीतेंगे कि आप लोग मुझसे गुजारिश करने लगेंगे, मिस्टर प्रेसिडेंट अब थोड़ा हार भी लिया जाए, हम बोर हो गए हैं। और मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, हम अमेरिका को दोबारा महान बनाएंगे।
सुपर ट्यूसडे को जब चुनाव के नतीजे आए तो उनकी जबरदस्त जीत ने शायद उनके चाहने वालों का यकीन और पुख्ता कर दिया होगा।
हम में एकजुटता बढ़ेगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी और हम नवंबर में चुनाव जीतेंगे।
दूसरे रिपब्लिकन उम्मीदवार टेड क्रूज को कुछ कामयाबी जरूर मिली, लेकिन फिलहाल वो ट्रंप से काफी पीछे हैं। डेमोक्रेट्स ने पिछले एक हफ्ते में हिलरी क्लिंटन की मुहिम में एक नया जोश दिखा है। वर्जीनिया के कई पोलिंग बूथ्स पर उसका असर नजर आ रहा था।
डेमोक्रेट्स का पीछे भी रिकॉर्ड जो है ओबामा का है अच्छा रहा है हमारे माइनॉरिटीज और मुस्लिम पीपल कम्युनिटी के लिए, तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर के मैं डेमोक्रेट्स को ही वोट दूं और हिलरी मुझे बेटर कैंडिडेट लगती है।
वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बर्नी सैंडर्स की पॉलिसी रास आ रही है।
मैंने बर्नी सैंडर्स को वोट डाला इसलिए कि क्योंकि एज अ फादर उनका कॉलेज स्कीम बहुत अच्छी है, बिकॉज आई हैव टू किड्स एंड आई एम लुकिंग फॉर बेटर एजुकेशन एंड ही इज सपोर्टिंग द एजुकेशन एंड आल्सो ही इज अ सोशलिस्ट सो दैट्स अ प्लस।
सुपर ट्यूसडे के बाद सैंडर्स काफी पीछे हैं, लेकिन उन्होंने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और उनका कहना है कि वो उन उसूलों के लिए लड़ते रहेंगे जिनकी वजह से वो इस मुहिम में कूदे हैं।
हम अमेरिका में चुनाव प्रचार की भ्रष्ट फंडिंग का अंत करेंगे।
वहीं जबरदस्त जीत के बावजूद हिलरी ये नहीं दिखा रही हैं कि वो वोटरों के फैसले से पहले ही खुद को उम्मीदवार मान बैठी हों। ये जरूर है कि सैंडर्स से ज्यादा अब वो ट्रंप पर हमले कर रही हैं।
दीवारें बनाने की बजाय हम उन्हें गिराएंगे और अवसर की सीढ़ियां बनाएंगे ताकि हर अमरीकी को खुशहाली का अवसर मिल पाए।
कई लोगों का मानना है कि उन्हें पकड़ पाना अब बर्नी सैंडर्स के लिए मुश्किल काम होगा। सुपर ट्यूसडे की शानदार जीत के बाद भी हिलरी क्लिंटन का पैगाम ये है कि वो बाकी बचे वोट के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगी। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गजों की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि हो सकता है कि न चाहते हुए भी उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर गले लगाना पड़े। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब भारत से बड़ी खबर। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले JNU के छात्रों ने कन्हैया के समर्थन में आज एक मार्च निकाला। विनीत खरे की रिपोर्ट।
कन्हैया की अंतरिम जमानत पर BBC से बात करते हुए कन्हैया की वकील रेबेका जॉन ने कहा,
देखिए वी हैव जस्ट, हमें सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर पता चला है कि 6 महीने की इंटरिम जमानत दी गई है। 6 महीने के अंत में हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा उसको परमानेंट बनाने के लिए, और 6 महीने की जमानत और एक श्योरिटी के साथ जो JNU के फैकल्टी मेंबर होना चाहिए टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दी पटियाला हाउस कोर्ट। तो ग्रेट ग्रेट रिलीफ, कन्हैया को बेल हो गई है। 6 महीने के बाद अगर उसका कॉन्डक्ट वगैरह सब कुछ ठीक है, क्योंकि स्टेट ने ऑब्जेक्शन लिया था कि शायद वो दोबारा कुछ ऐसे ना कर दे, तो 6 महीने के बाद इसको कंफर्म किया जाएगा।
9 फरवरी की रात विवादास्पद नारे लगने के बाद JNU छात्र यूनियन प्रमुख कन्हैया को देशद्रोह के अंतर्गत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस पांच छात्रों उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आशुतोष कुमार, अनंत प्रकाश और राम नागा की तलाश कर रही थी। कुछ दिनों बाद ये छात्र कैंपस पर दोबारा लौटे। पांच में से दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि बाकी छात्रों ने कहा कि वो पुलिस की पूछताछ के लिए तैयार हैं। बाद में उमर और अनिर्बान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेएनयू छात्र संगठन तीनों छात्रों की रिहाई के लिए लगातार प्रदर्शन करता रहा है और आज दिल्ली के मंडी हाउस से छात्रों ने एक जुलूस निकाला। कन्हैया मामले में पिछली सुनवाई 29 फरवरी को हुई थी, जहां समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अदालत के पुलिस से ये पूछने पर कि क्या उनके पास कन्हैया के खिलाफ कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य सबूत हैं, दिल्ली पुलिस ने कहा था वीडियो में कन्हैया नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। अदालत में कन्हैया के वकील कपिल सिब्बल ने एक टीवी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कन्हैया और अन्य छात्रों के खिलाफ एफआईआर उसी दिन क्यों नहीं दर्ज की गई, जबकि वहां सादे कपड़े में पुलिसकर्मी तैनात थे और घटना के चश्मदीद थे। कपिल सिब्बल ने अदालत में लगे आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि जेएनयू परिसर के अंदर भारत विरोधी नारे लगाने वाले नकाबपोष लोग थे। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में आज सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सदन में काले धन से लेकर रोजगार, रोहित वेमुला और जेएनयू तक सभी मुद्दों पर बोला। उनके भाषण में तंज, व्यंग और हास्य का पुट नजर आया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने उनके 6 साल के काम को मिट्टी में मिला दिया। अमर शर्मा की रिपोर्ट।
राहुल गांधी लोकसभा में जमकर बोले और हर मुद्दों पर बोले। राहुल ने सरकार को चुनावी वादा याद दिलाया और आरोप लगाया कि अब सरकार काला धन पर कड़ी कार्रवाई की बजाय काला धन को ही सफेद करने की स्कीम ले आई है।
2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा, जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन दाल 200 रुपए पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम लुढ़कने के बाद जो बचत हुई उसका 1 पैसा जनता को नहीं मिला, और मिला तो उद्योगपतियों को।
प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का, 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, जहां देखो इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए।
राहुल ने रोहित वेमुला और जेएनयू का मुद्दा भी उठाया।
अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने ना उसकी माँ को फोन लगाया, ना उसके बारे में बोला, एक शब्द नहीं उठाया उन्होंने। जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट का भाषण देता है, मैंने भाषण सुना, 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। उसको आप अरेस्ट करते हो। अगर जेएनयू में किसी ने कुछ गलत कहा, अगर कानून के खिलाफ किसी ने एक शब्द कहा, आप उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो। मगर उनको आपने खुला छोड़ रखा है, उनको आप बंद नहीं करते हो और जेएनयू पे सवाल उठाते हो।
राहुल ने यूपीए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस मनरेगा को प्रधानमंत्री ने यूपीए की असफलताओं का स्मारक कहा था, अब उसी की बड़ाई हो रही है। इस योजना को राहुल ने नरेगा बोल दिया था, बाद में उन्होंने सुधारा और कहा कि इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर है, सावरकर के नाम पर नहीं।
देखो भैया, आप आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो, आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं है, हम सीखते हैं। ये फर्क है हम में और आप में, एक तरफ गांधी दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है दूसरे अहिंसा का।
भाजपा सांसदों से मुखातिब हो राहुल ने कहा कि मोदी जी ताकतवर आदमी हैं, हम डरते हैं, आप भी डरते हैं, लेकिन डरते हुए उनके सामने आपको थोड़ा बोलना चाहिए। जब आप अपने ही लोगों को खामोश करते हैं तब आप राष्ट्र की रक्षा नहीं कर रहे होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्र केवल तिरंगा नहीं है, वो देश की विविधता और बहुलता का प्रतिनिधित्व करता है और हम तिरंगे को सलाम करते हुए उस विविधता और बहुलता को सलाम कर रहे होते हैं जिसका वो झंडा प्रतिनिधित्व करता है। राहुल गांधी ने कहा कि एक राष्ट्र इसके लोगों के बीच का रिश्ता होता है और अगर लोगों के बीच बातचीत को रोक देंगे तो राष्ट्र मर जाएगा।
राहुल गांधी का लोकसभा में भाषण।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। खबरें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में संदिग्ध माओवादियों द्वारा जिन ग्रामीणों की हत्या की गई थी उनकी संख्या बढ़कर 16 हो गई है। पुलिस का कहना है कि इन आदिवासियों की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्हें शक था कि ये ग्रामीण पुलिस के लिए काम करते थे। आइए सीधे चलते हैं रायपुर आलोक पुतुल के पास। आलोक, बताएं क्या विवरण है आपके पास?
मंगलवार की सुबह से ही ये खबर आ रही थी कि माओवादियों ने नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में कुछ ग्रामीणों की हत्या कर दी है। नारायणपुर का ये वो इलाका है जहां माओवादियों की मजबूत उपस्थिति मानी जाती है। खबर आई कि अबूझमाड़ के नेतानार, आलबेड़ा, परपा, कुंदला और मठबेड़ा गाँव में माओवादियों ने कुछ ग्रामीणों की हत्या कर दी है। मंगलवार की रात जब हमने इस बारे में नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा से बातचीत की तो उन्होंने 4 ग्रामीणों के मारे जाने की पुष्टि की थी। आज जगदलपुर में बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक के हवाले से ही दावा किया कि जिन ग्रामीणों की हत्या माओवादियों ने की है उनकी संख्या 16 तक पहुंच गई है। आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने मानवाधिकार संगठनों से भारी नाराजगी जताते हुए कहा कि 16 बस्तर के आदिवासियों को माओवादियों ने मारा है। जो मानवाधिकार संगठन अलग अलग मामलों पे मानवाधिकार की बात करते हैं वो अबूझमाड़ के इलाके में जाएं। हालांकि यह दिलचस्प है कि जिन गांवों में कथित माओवादियों ने ग्रामीणों की हत्या की है उन गांवों में अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है।
और क्या कारण बताया जा रहा है? क्या ये रिटेलिएशन है या कुछ सूत्रों में खबर आ रही है कि कुछ मुखबरी करने की बात है?
हमारी जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा से बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि लगातार पुलिस का दबाव माओवादियों पर बढ़ रहा है और ये हत्याएं जो है बौखलाहट में हुई हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना था कि माओवादी आम तौर पर जब कोई हत्या करते हैं तो उससे पहले वो जन अदालत लगाते हैं या ग्रामीणों को चेतावनी देते हैं, लेकिन इस ताजा घटनाक्रम में उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने अंधाधुंध तरीके से ग्रामीणों की हत्या की है।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पुतुल आपका। आजकल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के नए प्रत्याशी को चुनने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच क्यूबा में ग्वांतानामो जेल को बंद किए जाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। राष्ट्रपति ओबामा इस जेल को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन नहीं चाहते कि ये जेल बंद हो। तो इसी ग्वांतानामो जेल की कहानी सुनिए दुनिया जहान में मोहनलाल शर्मा से।
दुनिया जहां।
This first executive order that we are signing by the authority vested in me as president by the Constitution and the laws of the United States of America.
जनवरी 2009 में जब बराक ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला तो अगले ही दिन उन्होंने कहा कि वो एक साल के भीतर ग्वांतानामो बे जेल को बंद करना चाहते हैं। उस समय उन्होंने इस बंदी गृह को अलकायदा के लिए एक भर्ती केंद्र की संज्ञा दी थी, लेकिन 7 साल बाद भी उनका ग्वांतानामो बे जेल को बंद करने का वादा अभी भी अधूरा है। हालांकि इस जेल में कैदियों की तादाद लगातार घटते घटते 91 पहुंच गई है। अब जब अमेरिका नए राष्ट्रपति के लिए चुनावों की प्रक्रिया से गुजर रहा है, ओबामा ने एक बार फिर से इस जेल को बंद करने की वकालत की है।
When it becomes clear that something is not working as intended, when it does not advance our security, we have to change course.
इस समय जेल में बंद 91 लोगों के लिए 2000 गार्ड और स्टाफ तैनात है। हर कैदी के लिए 18 सैनिक तैनात है। इस जेल को बंद करने का ओबामा का जो इस समय का तर्क है, उनमें से एक है इसके रखरखाव पर आने वाला खर्च। सवाल यह है कि ग्वांतानामो बे कैसे दुनिया की सबसे बदनाम जेलों में शुमार हो गया। वो साल था 2001, तारीख थी 11 सितंबर, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर पर एक नहीं दो हवाई जहाज आकर टकराए थे। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। ये एक ऐसा हमला था जिसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका ने इस हमले के जवाब में अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद चरमपंथ से जुड़े होने के शक में सैकड़ों की तादाद में अफगानिस्तान और दूसरे देशों के लोगों को गिरफ्तार कर क्यूबा के ग्वांतानामो बे की जेल में डाल दिया। जनवरी 2002 में इस जेल को शुरू करने का मकसद उन युद्ध बंदियों को बंदी गृह में रखना था जिन पर अमेरिका के मुताबिक जेनेवा सम्मेलन के नियम या अमेरिकी कानून लागू नहीं होते थे। 11 जनवरी 2002 को ग्वांतानामो बे में पहली बार 20 कैदी लाए गए। इसके बाद से यहां अब तक लगभग 800 लोगों को रखा जा चुका है, जिनमें से अधिकतर पर न कोई आरोप तय किए गए और न ही मुकदमा चलाया गया। शहजादा खान ग्वांतानामो बे से अफगानिस्तान वापस लौट आए हैं। उन्हें तालिबान से संबंध रखने के आरोप में 2 साल तक इस जेल में रहना पड़ा था। बाद में कोई सबूत न मिलने के चलते उन्हें रिहा किया गया। जब वो जेल में कैद थे उस दौरान उन्हें एक लड़का पैदा हुआ। वो कहते हैं,
अगर कोई बच्चा लंबे अरसे तक अपने वालिद को नहीं देखता है तो क्या वो उन्हें वालिद मानेगा, जैसा कि मेरे बेटे के साथ हुआ जो कि मेरे कैद के दिनों में पैदा हुआ था। ऐसे बच्चों में वो एहसास पैदा ही नहीं होगा। मेरा बेटा भी मुझे मरा हुआ समझता। मुझे लगता है कि एक कैदी वैसा ही होता है जैसे कि एक मरा हुआ आदमी। आजाद इंसान ही जिंदा होते हैं।
एक दूसरे कैदी हाजी गालिब को अमरीकी सेना ने 2003 में अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया था। 4 साल कैद में रहने के बाद फरवरी 2007 में उन्हें ग्वांतानामो में अमरीकी अधिकारियों की ओर से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था उन्हें जल्द ही अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। उन पर भी कोई आरोप साबित नहीं हुए।
सारी दुनिया जानती है कि ग्वांतानामो जैसी कोई और जेल नहीं। वहां से लौटकर आना दूसरी दुनिया से लौटना जैसा है। ऐसा लगता है जैसे हम दोबारा पैदा हुए हैं। हमें लगता था कि वहीं इंतकाल हो जाएगा। ऐसा लगता है मरकर फिर से जिंदा हो गए हैं।
ग्वांतानामो बे जेल शुरुआत से ही विवादों में रही, खासकर जब जेल के कैदियों की तस्वीरें सामने आईं, चाहे वो पिंजड़े नुमा बाड़ों में आंखों पर पट्टी बांधे घुटनों के बल बैठे कैदी की तस्वीरें हों या बेड़ियों में जकड़े बंधकों पर हंसते हुए सैनिकों की तस्वीरें। मानवाधिकारों के हनन और सैन्य क्रूरता को लेकर विवादों में रही इस जेल में बंद कैदियों में अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब और अन्य देशों के लोग भी शामिल थे। तो कैसे ये जेल दुनिया के मानचित्र पर इतनी महत्वपूर्ण हो गई? अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं,
ग्वांतानामो बे क्यूबा पे एक एरिया है जो अमेरिका किराया देता है हर साल। अमेरिकन कोर्ट्स के जो रूल्स है वहाँ चलते हैं या नहीं है। बुश के जमाने में उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी वजह से एंटी अमेरिकनिज्म बहुत बढ़ गया था। उस एंटी अमेरिकनिज्म की जो नतीजा था कि जब अबू गरीब जैसे स्कैंडल्स बाहर निकलने लगे तो इंटरनेशनल मीडिया को, ह्यूमन राइट ग्रुप्स को एक छड़ी मिल गई जिससे वो अमेरिका की पिटाई करते रहे पब्लिक डोमेन में। शुरू में जो ग्वांतानामो में जो लोग थे उनमें से कई तो बहुत इनोसेंट थे और जब इनको रिहा किया और वो अपने मुल्कों में गए उससे अमेरिका के इमेज को काफी डैमेज हुआ।
ग्वांतानामो जेल में कैंप 5, 6 इको और डेल्टा है जिन्हें कैक्टस के जंगलों के बीच बनाया गया है। चारों ओर सुरक्षा का बेहद तगड़ा इंतजाम, लेकिन कैंप 5 और 6 में कड़ा प्रतिबंध है। कैदियों को देखने के लिए ऐसे शीशे लगाए गए हैं जिनमें बाहर के लोग कैदियों को देख सकते हैं लेकिन कैदी उन्हें नहीं। यहाँ कैदियों या उनके पहरेदारों की तस्वीरें लेना मना है। कैंप 7 में बेहद खतरनाक कैदी रहते हैं। बीबीसी पश्तो सेवा के दाऊद आजमी ने ग्वांतानामो बे जेल का दौरा किया है। तो कैसी दिखती है बदनाम हो चुकी ये जेल और कितना मुश्किल है यहाँ पहुँच पाना।
मैं 2014 में वहाँ गया और परमिशन लेनी बहुत मुश्किल है क्योंकि गुआंतानामो पर आप नहीं जा सकते, लेकिन जब आप अंदर दाखिल होते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सख्त सिक्योरिटी नहीं देखी थी और नेवल बेस के एक कोने पर ये जेल बना हुआ है। तो बेस में तकरीबन 6,000 लोग काम करते हैं, अमेरिकन जो मिलिट्री के लोग हैं। बेस का जो दूसरा एरिया है जहाँ पे जेल बना हुआ है, हर ब्लॉक के अंदर कई दरवाजे हैं और हर दरवाजे में लॉक्स लगी हुई हैं। तो अमेरिका के दो फौजी हर वक्त हमारे साथ रहते थे और फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, कुछ कैदियों पर सख्ती ज्यादा थी उनको या अलग अलग कमरों में रखा गया था। बाद कैदियों पर ये सख्ती थी कि उनको ना टीवी देखने की इजाज़त थी, ना रेडियो सुनने की इजाज़त थी, उनको बिल्कुल खबर नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है।
ओबामा के लिए इस जेल को बंद करना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, मगर कैसे? प्रोफेसर मुक्तदर खान,
अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं जो आखिरी साल होता है उनको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिसी में ओबामा ने काफी मेजर अचीवमेंट कर चुके हैं और फॉरेन पॉलिसी में भी उनको मेजर सक्सेसेस मिल गए हैं, ईरान और क्यूबा का। लेकिन अगर ये गुआंतानामो बंद कर लेते हैं तो उन्होंने अपने जो सारे मेजर प्रोमिसेस थे वो पूरे कर लेंगे, तो वो चाह रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव उनके ऊपर, तो वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट गुआंतानामो का जो मसला है वो बंद कर दे। और बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी ओबामा को उसके उनके लास्ट ईयर में कोई अचीवमेंट देना नहीं चाहती।
लेकिन अभी भी इस जेल में 91 कैदी है, उनका भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है।
दुनिया जहान, और अब एक नजर खेल समाचारों पर रजत चान्ना के साथ।
खेल समाचारों में सबसे पहले बात एशिया कप की। ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबले में पाकिस्तान की स्थिति काफी कमजोर है, 42 रनों पर ही 4 विकेट गिर चुके हैं पाकिस्तान ने के। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन दूसरे ही ओवर में खुर्रम मंजूर 1 ही रन पर आउट हो गए। उसके बाद शार्जिल खान 10 रन पर बोल्ड हो गए और उसके बाद मुर्तजा की गेंद पर मोहम्मद हाफिज 2 रन पर LBW होकर पवेलियन लौट गए। फाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और वहीं एशिया कप में कल भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। उधर बैडमिंटन में जर्बन ओपन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और पोलुपल्ली कश्यप ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। भारत के श्रीकांत ने जापान के ताकुमा उएडा को 2-21, 21-18 और 21-11 से मात दी। वहीं पोरुपल्ली ने पहले ही राउंड में यूक्रेन के आर्तेम पास्त्रेव को सीधे सेटों में हराया। और हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के अंतिम मैच में स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। भारतीय महिला टीम ने पिछले मैच में जर्मनी के खिलाफ 2-3 की शिकस्त से उभरते हुए दौर का अंत जीत के साथ किया। और वहीं कुआलालंपुर में भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। भारत की मोनिका बत्रा, के शामनी और मोहम्मद दास ने पहले ही मुकाबले जीते और क्रोएशिया को 3-0 से बात की। और एक बार और अगर बात करें तो पाकिस्तान की स्थिति अभी 46 रन बने हैं और 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर हो चुके हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत। और अब चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डेमोक्रेट पार्टी से हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने सुपर ट्यूसडे के दिन ज्यादातर राज्यों में जीत दर्ज की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है। इंडोनेशिया के दक्षिण पश्चिम में भयंकर भूकंप आने की खबर है। इंडोनेशिया के भूगर्भ विभाग के अनुसार इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 थी। वरिष्ठ नेटो कमांडर जनरल फिलिप ब्रीडलव ने कहा है कि हाल के दिनों में पूर्वी यूक्रेन पर हमलों में इजाफा हुआ है। पूर्वी अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए चरमपंथी हमले में कुल 7 लोग मारे गए हैं, इनमें 2 नागरिक भी शामिल हैं। 6 सदस्यीय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने लेबनान के संगठन हिजबुल्ला को एक चरमपंथी संगठन का दर्जा दिया है। गल्फ काउंसिल के महासचिव ने कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि हिजबुल्ला ने खाड़ी देशों के युवा लोगों की भर्ती शुरू कर दी थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।